नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 69। अध्याय का नाम है नारद मुनि द्वारा द्वारका में भगवान कृष्ण के महलों को देखना। तो इसके पहले हमने सुना था सांब का विवाह है, बलराम जी किस प्रकार हस्तिनापुर को गंगा जी में डुबो देना चाहते थे, तो फिर कौरवों ने उनसे क्षमा प्रार्थना की और दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का विवाह हुआ सांब के साथ। अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब नारद मुनि ने सुना कि भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध कर दिया है और अकेले अनेक स्त्रियों के साथ विवाह कर लिया है, तो नारद मुनि के मन में भगवान की इस स्थिति को देखने की इच्छा हुई। उन्होंने सोचा यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि एक ही शरीर में भगवान ने एक साथ 16,000 स्त्रियों से विवाह कर लिया और वो भी अलग अलग महलों में है। इस तरह देवर्षि उत्सुकता पूर्वक द्वारका गए। अब यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो नारद जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि भगवान जो है ना एक साथ कैसे रहते हैं। तो वैसे देखा जाए तो नारद जी को तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने तो अपना विस्तार सब जीवों के हृदय में भी किया है परमात्मा के रूप में, तो फिर भगवान के लिए क्या आश्चर्य है कि 16,108 महलों में एक साथ रहते हैं। नहीं, नारद जी जानते हैं कि भगवान ने विस्तार किया है सब जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में, लेकिन फिर भी कुछ और विशेषता है जो भगवान 16,108 महलों में रहते हैं, तो ये उनके स्वांश विस्तार है ना। तो कुछ और विशेषता है कि परमात्मा के रूप में भगवान रहते हैं सबके हृदय में, तो वो तो स्मृति ज्ञान अपोहनम जैसे कहा गया है वो करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर तो भगवान अलग अलग महलों में अलग अलग लीलाएं कर रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो है उनको बहुत आश्चर्य हुआ और द्वारका गए। अब ये नगर कैसा है? द्वारका का नगर बगीचों और उद्यानों से युक्त है, जिसके आसपास पक्षी और भौरे गुंजार करते हैं। इसके सरोवर खिले हुए कमल से भरे हुए हैं। कई प्रकार के कमल हैं, इंदिवर, अंभोज, कहलार, कुमुद, उत्पल और हंसों और सारसों की बोलियों से गुंजायमान है। द्वारका में जो है 900,000 राजमहल हैं। 16,108 तो भगवान की स्त्रियों के महल हैं, है ना। लेकिन कुल मिलाकर के कितने महल हैं? 900,000। ये सारे महल कैसे बने हैं? स्फटिक और चांदी के बने हैं। स्फटिक और चांदी के बने हुए महल हैं ये, और विशाल मरकत मणियों से जाज्वल्यमान है। इन महलों के भीतर साज सामान पर सोने और रत्नों की सजावट है, और यातायात के लिए गलियां व्यवस्थित हैं। गलियां, सड़कें, चौराहे, बाजार सब बहुत व्यवस्थित हैं। ऐसा नहीं कि इधर ट्रैफिक जाम हो रहा है उधर ट्रैफिक जाम हो रहा है, नहीं, सब व्यवस्था अच्छी प्रकार से है। और इस मनोहर नगर में अनेक सभा भवन और देव मंदिर शोभा को बढ़ाने वाले हैं। बाजार भी जो ना ऐसे हैं कि मतलब ये नहीं कि रास्ता बंद हो जाए। कितने बाजार हैं वहाँ रास्ते ही बंद हैं, है ना। ट्रकें खड़े हैं तो लोड हो रहे हैं, अब वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, सब ट्रक जो ना खड़े हैं। एक रास्ते में खड़ा हो गया तो सब पूरा रास्ता बंद हो गया, कई ट्रक है ना खड़े हैं, चल नहीं पा रहे हैं। तो सब व्यवस्था है बाजार की, सड़कों की, चौराहों की। अनेक सभा भवन हैं और सड़कें आंगन तो कैसे हैं, जल से सिंचे हुए हैं। जल से सिंचे मतलब धूल नहीं उड़ती बिल्कुल, हमेशा जल से सिंचाई होती रहती है हमेशा, कभी धूल नहीं उड़ेगी। व्यापारिक मार्ग हैं और घरों के आंगन हैं, जल से सिंचे हुए हैं और लट्ठों से लहरा रहे झंडों से सूर्य की गर्मी से छाया पा रहे हैं। इतने ध्वजाएं पताकाएं ऊपर फैला रही हैं कि सड़कों में बाजारों में कहीं भी क्या है, धूप धूप नहीं है। ये द्वारका का जो है ना ऐश्वर्य। तो नारद जी ने सुना कि नरकासुर का वध करके भगवान ने इतनी स्त्रियां इकट्ठी पाई हैं, तो बहुत आश्चर्य है उनको। नरकम निहतम सुत्वाम तथोद्वाहम च योषिताम कृष्णेन केन बहवीनाम तद्दृक्षोस्मे नारदहाम चित्रम बते तदेकेन वपुषा युगपत् पृथक् गृहेषु दृष्ट्य साहस्रम स्त्रिय एक उदाहवन इत्युत्सुको द्वारवती देवर्षिर्द्रष्टुमागम पुष्पितो पवनाराम द्विजाली कुलनादिताम उत्फुल्लेन्दी वनाम भोज कहलारे कुमुदोत्पल छुरते सुसहा सुच कूजिताम हंस सारस प्रासाद लक्षैर्नवभिर् जुष्टाम स्फाटिकार जैन महामरकत प्रख्य स्वर्ण रत्न परिच्छदे विभक्त रथ्या पथ चत्वरापणे शाला सभा भी रुचिराम सुरालय संसक्ति मार्गांगन वीथि देहिनी पतन पता का ध्वज वारिता तपाम। तात्पर्य में लिखा है श्रील प्रभुपाद ने श्री कृष्ण पुस्तक में द्वारका नगरी का सुंदर वर्णन इस प्रकार किया है। अब प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं इस विषय में कि श्री कृष्ण अनेक पत्नियों के साथ किस तरह गृहस्थी चला रहे हैं। जिज्ञासा होने के कारण नारद जी को इन लीलाओं के दर्शन करने की इच्छा हुई। एक व्यक्ति के लिए तो एक घर चलाना बड़ा मुश्किल होता है, एक पत्नी है और भगवान की इतनी पत्नियां और इतने महल और फिर इतने बच्चे सब है? तो नारद जी को बहुत इच्छा हुई जानने की कि कैसे भगवान चला रहे हैं। अतः वे श्री कृष्ण के विभिन्न घरों को देखने के चल पड़े। जब नारद द्वारका पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वाटिकाएं और उद्यान रंग बिरंगे फूलों से पूर्ण है और फलों की वाटिकाएं अनेक प्रकार के फलों से लदी हुई हैं। सुंदर पक्षी चहचहा रहे थे और मोर हर्ष से बोल रहे थे। वहां ताल और सरोवर थे जो रक्त कमल और नील कमलों से भरे थे। किसी किसी जगह पर कुमुदनियां खिली थीं। जलाशयों में सुंदर हंस और सारस भरे थे, उनकी ध्वनि चारों ओर गूंज रही थी। नगर में चांदी से बने हुए द्वारों वाले और उच्च कोटि के संगमरमर से बने हुए 900,000 विशाल महल थे। और इन घरों में और महलों के जो स्तंभ हैं यानी खंभे कैसे हैं, पारस पत्थर से और नीलम और मरकत मणियों से जड़े हैं खंभे, और फर्श से सुंदर प्रकाश निकलता है, ऐसे रत्न हैं। मुख्य पथ हैं, गलियां चौराहे बाजार बहुत सुंदर ढंग से सजाए गए हैं। संपूर्ण नगर विविध प्रकार के शिल्प सौंदर्य वाले गृहों से पूर्ण है। ये सब मिलकर द्वारका को देदीप्यमान नगर बना रहे थे। चौराहे हैं, गलियां हैं, मार्ग हैं, घर के आंगन बहुत स्वच्छ हैं। प्रत्येक मार्ग के दोनों ओर झाड़ियां समान अंतर पर हैं, झाड़ियां और वृक्ष समान अंतर पर हैं जो छाया प्रदान करते थे ताकि पथिकों को धूप से कष्ट ना हो। और नारद जी ने क्या देखा, द्वारका नगर में एक सुंदर अंतःपुर था जो लोकपालों द्वारा पूजित था। इसमें विश्वकर्मा ने अपनी सारी निपुणता दिखलाई। अंतापुरम भगवान हरि का रिहायशी क्षेत्र था, अतः ऐसे भगवान कृष्ण की रानियों के 16,000 महलों से खूब सजाया गया था। नारद मुनि इन्हीं विशाल महलों में से एक में प्रविष्ट हुए। 9,00,000 महलों में से एक अंतापुर है, उसके अंदर 16,108 महल है। उनमें से एक में नारद जी गए। तस्याम अंतापुरम श्रीमन अर्चितम सर्वधिस्नेपे हरि स्वकौशलम तत्र त्वष्ट्राकार्तनेन दर्शितम तत्र षोडशभि तन्म सहस्र समलंकृतम विवेशकतमं शौर्ये पत्नीनां भवनम् महः। तात्पर्य लिखा है, श्री जीव गोस्वामी इशारा करते हैं कि विश्वकर्मा ने भगवान की निपुणता प्रदर्शित की, अतः वो ऐसे सुंदर महल बना सका। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, संसार के बड़े बड़े राजा तथा राजकुमार इन महलों को देखने के लिए आते थे, इन महलों को देखते थे और भगवान की पूजा करते थे। दर्शनी विजिटिंग क्या बोलते हैं, विजिटिंग प्लेस, दर्शनीय स्थल है ना, विजिटर्स, तो विजिटर्स आते थे यहाँ देखने के लिए। और इन महलों के निर्माण में विश्वकर्मा ने अपनी सारी प्रतिभा और कौशल का प्रदर्शन किया था। आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, महल को साधने वाले मूंगों के खंभों में बेदूरी मणि जड़े हुए थे, दीवालों पर नीलम जड़े थे और फर्श नित्य चमक से चमक रहे थे। फर्श की चमक कभी समाप्त नहीं होती। फर्श देखो, फर्श तो बड़ी जल्दी मैला हो जाता है ना, लेकिन फर्शों की चमक कभी समाप्त नहीं होती। उस महल में विश्वकर्मा ने चंदोवे बनाए थे जिनसे मोतियों की लड़ें लटक रही थीं। आसन और पलंग हाथी के दांत के बने और बहुमूल्य रत्नों के बने हुए थे। उनकी सेवा में अनेक वस्त्राभूषित दासियां थीं जो अपने गलों में लॉकेट पहने थीं। साथ ही कवचधारी रक्षक थे जो क्या पहने हैं, साफा मतलब पगड़ी, और सुंदर वर्दी है, रत्न जटित कुंडल है उनके। अनेक रत्न जटित दीपों का प्रकाश महल के अंधकार को दूर कर रहा था। ये बल्ब नहीं है, रत्नों के दीपक हैं, इसमें कोई लाइट फेल की कोई बात ही नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी फेल नहीं है, रत्नों के दीपक हैं, उनसे प्रकाश हो रहा है, अंधकार दूर हो रहा है। हीराजन महल के छज्जों पर जोर जोर से बोलते हुए मोर नाचते हैं, और उनको भ्रम होता है बादल का, क्यों, जालीदार खिड़कियों से सुगंधित अगुरु निकलती है धुआं, तो उनको बादल का भ्रम होता है तो मोर नाचते हैं। मोर की विशेषता है, जब बादलों को देखता है तो नाचता है, तो महल के जो है ना खिड़की से जो निकलता है कितना धुआं निकल रहा है अगुरु का। विस्तंभम विद्रुमस्तंभेर वैदूर्य फलकोत्तम इंद्रनीलमय कुडैर जगत्या चाह तत्पिसां वितानेर निर्मित स्वस्त्रां मुक्ता दाम विलंबि भी दांतेरासन पर्यंकैर मन्युत्तम परिष्कृत दासी भीर निष्कंठी भी सुवासो भीर लंकृतम कुंभी सकंचुकोष्णी सुवस्त्र मणि कुंडल रत्न प्रदीप निकर द्युतिभिर निरस्त ध्वांतम विचित्र वल्लभी सुशिखंडिनोंग नृत्यन्ति यत्र विहिता गुरु धूम मक्षय निर्यान्त्यमीक्ष घन बोधय उन्नदन्तः। तात्पर्य में शिला प्रभुपाद लिखते हैं, इतना अधिक सुगंधित धूप जलाया जा रहा था कि सुगंधित धुआं खिड़कियों से बाहर आ रहा था और मयूरों को उस धुएं से भ्रम हो गया, जिससे भी उन्हें मेघ समझकर हर्ष से नृत्य करने लगे। और सभी दास दासियां अत्यंत सुंदर हैं, विभिन्न घर के कारों में संलग्न हैं। उस महल में अब नारद जी गए तो क्या देखा कि सात्वत पति श्री कृष्ण हैं। हाँ, उनको पत्नी के समय देखा और पत्नी क्या कर रही है, सोने की मुठ वाली चामर से पंखा झल रही है। इस तरह स्वयं उनकी सेवा कर रही हैं, यद्यपि उनकी सेवा में निरंतर 1000 दासियां लगी हैं। ये पत्नी स्वयं सेवा करती है। हाँ? और वो पत्नी कैसी है, अपने चरित्र से, सौंदर्य से, तारुण्य से और सुंदर वेशभूषा में उन्हीं के समान है, भगवान के समान है, सब प्रकार से किसी प्रकार कमी नहीं है। जैसे भगवान है हर प्रकार से, उसी प्रकार से पूर्ण है भगवान की पत्नी है। तस्मिन समान गुण रूप वहां सुवेश दासी सहस्त्र युतयानुसवम गृहिण्या विप्रोद दर्श चमरे बिजनेन रूप में दंडे न सात्वत पतिम परिवीजयंत्या। अब भगवान जो है देखिए धर्म के सबसे बड़े धारक हैं, मतलब पालन करने वाले भगवान स्वयं ही हैं, है ना। भगवान इस भौतिक संसार में आते हैं तो धर्म की शिक्षा देने के लिए आते हैं और धर्म का आचरण करने के लिए आते हैं, है ना। तो ये दिखा रहे हैं भगवान कि कोई कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, अगर कोई विरक्त साधु सन्यासी आए तो कैसे उसका स्वागत करना चाहिए। अतः जब उन्होंने नारद को देखा, वैसे तो भगवान सब जानते हैं लेकिन दिखला रहे हैं कि जैसे आप देखते हो आपने आपके घर में कोई आए हैं साधु संत, तो वे तुरंत श्री देवी के पलंग पर से उठ खड़े हुए, नारद के चरणों पर मुकुट युक्त सिर को झुकाया और अपने हाथ जोड़कर मुनि को अपने आसन पर बिठाया। तम सन्निरीक्ष भगवान सहसोत्थित श्री पर्यंकता सकल धर्म भृताम आनम्य पाद युगलम शिरसा किरीट जुष्टे ने सांजलि रवि विषदासने स्वे। अब देखो भगवान मनुष्य का आचरण कर रहे हैं, हैं? एक राजा राजा को भी जो है ना कैसे सन्यासी और साधु का जो है ना सम्मान करना चाहिए, फिर साधारण व्यक्ति की बात ही क्या है, है ना। तो भगवान क्या करते हैं, नारद जी के चरण धोते हैं और उस धोवन को अपने सिर में धारण करते हैं। भगवान यद्यपि भगवान कृष्ण ब्रह्मांड के परम गुरु हैं और अपने भक्तों के स्वामी हैं, किंतु इस तरह से आचरण करना उनके लिए उपयुक्त है क्योंकि उनका नाम ब्रह्मण्य देव है, नमो ब्रह्मण्य देवाय, अर्थात ब्राह्मणों का पक्ष लेने वाले भगवान। इस तरह श्री कृष्ण ने नारद मुनि के चरण पखार कर उनका सम्मान किया, यद्यपि भगवान के ही चरणों को धोने वाला जल गंगा बन जाता है जो कि परम तीर्थ है। तस्यावनिज चरणों तदपहा समूर्धनाम बिम्रन जगन गुरु तमोपिसताम पतिरी ब्रह्मण्य देव इति यन गुण नाम युक्तम तस्य चरण शौच मसे तीर्थम। तात्पर्य लिखा है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल सर्वाधिक पवित्र गंगा के भी उद्गम है, अतएव नारद मुनि के चरण पखार कर भगवान ने अपने आप को शुद्ध करना, भगवान के लिए अपने आप को शुद्ध करना आवश्यक नहीं था। बल्कि जैसा प्रभुपाद बताते हैं द्वारका में भगवान कृष्ण पूर्ण मनुष्य की लीला का आनंद ले रहे थे, पूर्ण मनुष्य हर मामले में पूर्ण, मतलब पति भी कैसा हो ऐसा हो, पुत्र भी कैसा हो ऐसा हो, है ना, मालिक कैसा हो तो ऐसा हो, है ना, राजा हो कैसा हो तो ऐसा हो, ब्राह्मणों की सेवा भी कैसे करनी चाहिए ऐसे करनी चाहिए, सब प्रकार से। अतएव जब उन्होंने नारद मुनि के चरणों को पखार कर उस जल को अपने सिर पर धारण किया तो नारद जी ने आपत्ति नहीं की है? नारद जी तो भगवान की लीलाओं को समझते हैं, है ना, तो भगवान की लीला में और सहयोग करते हैं, है ना। बल्कि कंस को भी यही कहा था, है? कंस को ही कहा था कि विश्वास नहीं करना देव की वसुदेव का, क्योंकि ये लोग देवता हैं, है? देव की वसुदेव केवल नहीं, ये दुमंस में जितने भी लोग पैदा हो रहे हैं और पैदा हुए हैं वो सब देवता हैं, है ना। और पृथ्वी का भार उतारने के लिए विष्णु भी जन्म लेंगे तो उनकी सहायता करेंगे ये सब देवता लोग, इसे तुम्हारे दुश्मन है ये, इनका विश्वास नहीं करना। कंतु के इस प्रकार नारद जी समझाते हैं, तो जानते हैं भगवान मनुष्य लीला कर रहे हैं है? तो उन्होंने आपत्ति नहीं की, नहीं तो हाथ पकड़ते अरे प्रभु ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने बैठाया पलंग पर तो बैठ गए, और भगवान नीचे जमीन में बैठे उनके पैर धो रहे हैं, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि भगवान ने हर एक को शिक्षा देने के लिए ऐसा किया है कि किस तरह संत पुरुषों का आदर किया जाता है। और ये सब वैदिक विधि के अनुसार भगवान ने पूजा की है, वेदों में जैसी विधि बतलाई गई है। इसके बाद फिर भगवान कृष्ण नारद जी से बातें करते हैं, और भगवान की नपी तुली वाणी कैसी है, अमृत के समान मधुर वाणी है। अंत में भगवान ने नारद जी से पूछा कि हे प्रभु हम आपके लिए क्या करें, आपकी क्या सेवा करें, पूरा शिष्टाचार। संपूज्य देव ऋषि वर्य ऋषि पुराणो नारायणो नरसखो विधिनो दितेन वाण्याभिभाषमितया मृतविष्टया तम प्राहे प्रभो भगवते करवामहे किम। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं नारायण नरसखा भगवान कृष्ण को, नारायण और नरसखो, नर के सखा है नारायण है भगवान, इसका मतलब क्या है कि कृष्ण साक्षात नारायण है जो नर ऋषि के मित्र के रूप में प्रकट हुए हैं। नर ऋषि कौन है, अर्जुन। हाँ, दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण कैसे हैं, पुराण ऋषि हैं, अर्थात आदि और परम गुरु हैं, फिर भी वैदिक आदेशों का पालन करते हुए कि क्षत्रिय को ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए, भगवान कृष्ण ने खुशी खुशी अपने शुद्ध भक्त नारद मुनि की पूजा की। तो नर ऋषि के मित्र हैं, एक तो इसका यही मतलब है कि अर्जुन के मित्र हैं, और नर के मित्र हैं मतलब मनुष्य के मित्र हैं भगवान, इसका यह भी अर्थ है। मनुष्यों के मित्र हैं तो हर मनुष्य को जो है अपने मित्र के समान आचरण करना चाहिए, तो भगवान जो है मनुष्यों के मित्र बन करके ऐसा आचरण कर रहे हैं। अब नारद जी ने क्या कहा, जब उन्होंने पूछा कि आपकी क्या सेवा करें, तो नारद जी ने क्या कहा, हे सर्वशक्तिमान इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि समस्त जगत के शासक आप सारे लोगों से मित्रता प्रदर्शित करते हुए भी दुष्टों का दमन करते हैं। जैसा कि हम सभी लोग भली भांति जानते हैं, आप इस ब्रह्मांड में इसके पालन और रक्षण के द्वारा परम लाभ प्रदान करने के लिए स्वेच्छा से अवतरित होते हैं। नैवाद्भुतम त्वयि विभो खिल लोकनाथ मैत्री जने सुसकले सुतमा खलाना नेत्रेशाय जगत स्थिति रक्षणाभ्याम स्वैरावतार उरुगाय वेदाम सुष्ठु। तात्पर्य लिखा है, जैसा कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती इशारा करते हैं कि वस्तुतः सारे जीव भगवान के दास हैं, उन्होंने व्याख्या के लिए पद्म पुराण का एक श्लोक उद्धृत किया है, अकारेणोचते विष्णु श्री रुकारेण कथते मकारसु तयोर्दास पंचविंश प्रकीर्ति ओम। जो मंत्र है तो इसमें आ अक्षर भगवान विष्णु का सूचक है और उ देवी श्री का सूचक है, श्री देवी लक्ष्मी देवी, और मा उनके दास का सूचक है। तो ये जीव प्रत्येक जीव ईश्वर का दास है और ईश्वर हर जीव के असली मित्र हैं। इस तरह भगवान जब जरासंध जैसे दुष्ट व्यक्तियों को भी दंडित करते हैं तो वो दंड भी एक प्रकार से मित्रता होता है, क्योंकि भगवान द्वारा दिया जाने वाला दंड और उनका आशीर्वाद दोनों ही जीव के लाभ हेतु हैं। अब नारद जी क्या कह रहे हैं भगवान से, अब मैंने आपके उन चरणों के दर्शन कर लिए जो आपके भक्तों को मोक्ष प्रदान करते हैं और जिन्हें ब्रह्मा और अथाह बुद्धि वाले अन्य महापुरुष भी केवल अपने हृदयों में ध्यान कर सकते हैं, किंतु जो भवकूप में गिर चुके हैं, भवकूप यानी भवसागर, वे उद्धार हेतु जिनकी शरण ग्रहण करते हैं, आप मुझ पर कृपालु होइए जिससे वितरण करते हुए मैं निरंतर आपका स्मरण कर सकूं, कृपा करके मुझे शक्ति दें कि मैं आपका स्मरण कर सकूं। ये प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से। दृष्टम तवांग्रि जुगलम जनताप वर्गम ब्रह्मादि हृदय विचिंत मगाधि बोधे संसार कूप पति तो तरणावलंबम ध्यायन सराम्यनुग्रहाण यथा स्मृति श्याम। हा बहुत सुंदर जवाब दिया नारद जी ने। भगवान किसने कहा कि हम आपकी क्या सेवा करें? तो नारद जी ने कहा कि हमें ये चाहिए, क्या? आपके चरणों का स्मरण चाहिए हमेशा। ये दीजिए, कितना सुंदर जवाब है। तो यहाँ नारद उत्तर दे रहे हैं। नारद मुनि भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, अतः उनकी प्रार्थना दिव्य है। अगर आपसे भगवान कहें अचानक कि क्या चाहिए, तो आप सोचोगे कि मैं क्या मांगूंगा, है कि नहीं? तो पहले से सोच लो, अगर कभी मौका मिला भगवान से कुछ मांगने का, है ना, तो ये मांगो। अच्छा। आप सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजन, तब नारद भगवान कृष्ण की दूसरी पत्नी के महल में प्रवेश करते हैं। वे योगेश्वरों के ईश्वर की आध्यात्मिक शक्ति देखने के इच्छुक थे। ततोन्यदा विसंगेहम कृष्ण पत्न्या स नारद योगेश्वरेश्वरस्यांग योग माया विवेत्थया। हाँ, ये जो है भगवान कृष्ण का जो ऐश्वर्य है ये देखने लायक है, क्योंकि भगवान की नकल कोई नहीं कर सकता। बड़े बड़े योगी भगवान की नकल नहीं कर सकते, अगर कभी करते भी हैं, जैसे सौभरी मुनि, इतना तो नहीं, लेकिन उन्होंने विवाह किए थे कितने, 50, है ना, तो अपने 50 रूप धारण कर लिए। प्रत्येक पत्नी के महल में रहते थे 50 रूपों में, है ना, और फिर उनसे बच्चे भी पैदा किए, है ना। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ, उनकी सब तपस्या समाप्त हो गई, सब तपस्या समाप्त हो गई, और उनको फिर बड़ा पश्चाताप हुआ कि अरे ये क्या, मैं फंस गया एक मछली के संग से। पानी के अंदर, जमुना जी के जल के अंदर बैठ के तपस्या कर रहे थे कि संसार की संगति से दूर रहने के लिए, लेकिन भक्तों की संगति नहीं करी। भक्तों की संगति में ही सुरक्षा है, नहीं तो उन्होंने कहा कि भाई संसार की संगति ना हो, मतलब दुनिया भर में क्या है, स्त्री पुरुष दिखाई पड़ते हैं, है ना, ये स्त्री पुरुष का जो चक्कर है छोड़ो। तो पानी के अंदर डूब गए, पानी के अंदर डूब करके जमुना जी के अंदर तपस्या कर रहे थे, और वहां भी स्त्री पुरुष मछलियां, हैं, और जैसे ही देखा स्त्री पुरुष का संग, उनकी इच्छा हुई, और महाराज मानधाता के पास आए, मुझे एक कन्या दे दो। मानधाता ने देखा कि महाराज तो हैं बिल्कुल बूढ़े, हैं, सब नसें दिखाई दे रही हैं, हैं, और बिल्कुल बिल्कुल शरीर में शक्ति नहीं, मतलब खून मांस है ही नहीं, बिल्कुल हड्डियां हड्डियां हैं पूरे शरीर में, और कन्या मांग रहे, अपनी कन्या का जीवन बर्बाद करूंगा मैं क्या, और महाराज को अगर मना करें तो साफ दे देंगे, तो धर्म संकट में पड़ गए। तो फिर उनको उपाय सुझा कि कैसे अपना बचाव किया जाए, तो कहा महाराज हमारे अंतःपुर में आप चले जाओ, जो कन्या आपका वरण कर ले आप विवाह कर लो। तो सीधी बात तो क्या है, मना किया, कौन कन्या चाहेगी इनको पति बनाना, अपनी इच्छा से जो कन्या आपसे विवाह करे आप उसको ले जाओ। तो सौभरी मुनि समझ गए कि तो मना करने की एक दूसरी विधि है, हैं? सीधे मना नहीं कर रहे हैं कि मैं गुस्सा हो जाऊंगा, पूरा राज्य है और जो ना उनका जो ना परिवार है वो सब नष्ट हो जाता ब्राह्मण का अपराध करने से, बहुत डरते हैं ब्राह्मणों से। तो फिर सौभरी मुनि ने अपनी तपस्या से ऐसा रूप बनाया कि 50 के 50 कन्याएं लड़ने लगी आपस में, कि मैं इनको पति बनाऊंगी, मैं इनको पति बनाऊंगी, लज्जा छोड़ करके। कोई भी लड़की जो है ना ऐसे कभी नहीं बोलती है कि नहीं, लेकिन इतना सुंदर उन्होंने रूप बनाया कि वो लड़ाई करने लगी एक दूसरे से। तो सौभरी मुनि कहते हैं ना ना आप लोग जो है ना लड़ाई मत करो, मैं 50 के से विवाह करूंगा, है ना, और 50 रूप धारण कर लिए। तो इसके बाद फिर जो है 50 महलों में 50 रूप धारण करके रहते थे और मानधाता अपनी अपनी पुत्रियों का जो है जीवन देखने के लिए गए कि कैसी सुखी है कि नहीं है, है ना। तो पता चला कि सब पुत्रियां बहुत सुखी हैं, सब प्रकार का सुख वैभव है हर घर में, है ना। लेकिन बाद में फिर जो है ना सौभरी मुनि बहुत पछताए, ओहो मैं जो है अकेला था, तपस्या कर रहा था, फिर मैं 50 बन गया, फिर 500 बन गया, क्योंकि एक एक पत्नी के 10-10 पुत्र हुए तो उनको और विस्तार करना पड़ा अपना 10-10, तो फिर 500 और अपने विस्तार किए, है ना। अब उनकी तपस्या सब समाप्त हो गई, है ना। तो फिर बाद में क्या किया उन्होंने, अपने शरीर को जला दिया अग्नि में, है? और उनकी जो 50 पत्नियां थी उन्होंने भी उनके साथ सती हो गई, वो भी तो अग्नि में जल गई वो। तो इस तरह की, तो मतलब कोई भी योगेश्वर कितना बड़े से बड़ा योगी क्यों ना हो, भगवान की नकल नहीं कर सकता है, है ना। तो यहाँ पर ये बताया गया है, तो निदा विसंगे हम कृष्ण पत्न्या सनारद योगेश्वर सुरस्यांग योग माया विवेचया। अब दूसरे महल में क्या भगवान को देखा, बिल्कुल अलग अलग स्थिति में है, बिल्कुल क्या अपनी प्रिया और मित्र उद्धव के साथ चौसर खेल रहे हैं, पत्नी भी बैठी है और उद्धव जी बैठे हैं, तीन लोग जो ना चौसर खेल रहे हैं। भगवान कृष्ण ने खड़े होकर के आसन देकर के नारद जी की पूजा की और पूछा कि आप कब आए एक महल में तो सत्कार किया सम्मान किया, यहाँ पूछ रहे हैं कि आप कब आए, हमें तो पता नहीं चल रहा कब आए आप, मानो में कुछ नहीं जानते हैं, हम जैसे अपूर्ण व्यक्ति आप जैसे पूर्ण व्यक्तियों के लिए क्या कर सकते हैं। भगवान कह रहे हैं हम लोग तो अपूर्ण हैं, हमें पता नहीं चलता है आप कब आते हैं, हम क्या सेवा कर सकते हैं आपकी। हे ब्राह्मण जैसा भी हो कृपा करके मेरे जीवन को शुभ बना दो, ऐसा कहे जाने पर नारद जी चकित हो गए अब नारद जी क्या उत्तर दें, नारद जी अब जवाब ही नहीं दे पाते, उनको जवाब ही नहीं मिल रहा है, और चुपचाप खड़े रहे और दूसरे महल में चले गए दिव्यंतम अक्षय तत्रापि प्रियाचो दवेन च पूजिता परया भक्त्या प्रत्युत्थासान साध्वी पृष्ठश्चा विदुषे वासम कदाया तो भवानिति कृते किम्न पूर्णानाम अपूर्णे रस्मदादिभि अथापि ब्रूहिणो ब्रह्मन् जन्मतंचोपनम कुरु चतुर्विस्मित उत्थाय तूष्णीमन्यन् अगान् गृहम्। तात्पर्य लिखा है भगवान कृष्ण पुस्तक में श्रील प्रभुपाद बतलाते हैं कि जब नारद दूसरे महल में आए तो किसने ऐसा अभिनय किया मानो रुक्मिणी के महल में जो कुछ हुआ था वो जानते ही नहीं है। नारद जी समझ गए कि कृष्ण एक ही समय दोनों महलों में उपस्थित थे और विभिन्न कार्य कर रहे थे, अतः वे भगवान के कार्यों पर अत्यधिक आश्चर्य करके चुपचाप उस महल से चलते बने। मतलब नारद जी ने भी रहस्य नहीं खोलना चाहा, क्यों, क्योंकि उनकी पत्नी को पता चलेगा है तो वो नाराज होगी, यही जानती है कि भगवान मेरे साथ हैं और किसी के साथ नहीं है, इसी कारण से गर्व होता है, प्रत्येक पत्नी को गर्व होता है कि भगवान सबसे ज्यादा मुझे पसंद करते हैं, मैं सबसे ज्यादा प्रिया हूं भगवान की, और फिर भगवान किसी न किसी युक्ति से प्रत्येक पत्नी का गर्व दूर करते हैं, और एक घटना हम पहले सुन चुके हैं रुक्मिणी जी का भी गर्व भगवान ने कैसे दूर किया, तो यही कहा कि मैं तो तुम्हारे योग्य नहीं हूं, है ना, इस तरह से भगवान ने कहा। तो इस प्रकार से प्रत्येक पत्नी के साथ भगवान लीला करते हैं, लेकिन ये किसी पत्नी को पता नहीं चलता है ये रहस्य है कि भगवान दूसरे। तो नारद जी जो है इसलिए ये बताना नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस पैदा हो जाए तो घर के अंदर जो है लड़ाई झगड़ा किसी प्रकार ना हो, किसी नारद जी कुछ बोले नहीं कि अभी तो मैंने आपको उधर देखा रुक्मिणी के महल में देखा, आश्चर्य करके चुपचाप चले, जैसे भगवान ने कहा वो अपना रास्ता ना पाओ उन्होंने। अब नारद जी ने देखा तीसरे महल में भगवान कृष्ण अपने छोटे छोटे बच्चों को दुलार रहे हैं, खिला रहे हैं, है? वहां से फिर अन्य महल में गए तो देखा कृष्ण जी स्नान करने की तैयारी कर रहे हैं अभी। तत्राप्य चष्टय गोविंदम लालयंतम सुतान शिशु ततोऽन्यस्मिन् गृहे पश्यन् मज्जनाय कृतोद्यमम्। तात्पर्य लिखा है कि शील प्रभुपाद ने भगवान कृष्ण पुस्तक में लिखा है और विश्वनाथ चक्रवर्ती भी टीका करते हैं कि नारद जी प्राय जितने महलों में गए तो भगवान ने वहां भावन की पूजा की और सम्मान प्रदान किया नारद जी का। और एक महल में भगवान क्या कर रहे हैं, यज्ञ में अग्नि की आहुति डाल रहे हैं, यज्ञ अग्नि में आहुति डाल रहे हैं। और फिर दूसरे महल में कहा है पंच महायज्ञ कर रहे हैं। फिर और महल में ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं और कहीं पर ब्राह्मणों का छोड़ा हुआ भोजन खा रहे हैं भगवान है? जूठन भवंतम चावितानाग्नि यजंतम पंचभिर्मखे भोजयंतम द्विजान क्वापी भुंजानम अवशेषितम। तात्पर्य लिखा है पंच महायज्ञ क्या है, पंच महायज्ञ क्या होता है, एक तो वेद पाठ, दूसरा अग्नि में आहुति डालना, तीसरा अतिथियों की सेवा करना, चौथा पूर्वजों को बलि देना तर्पण, और पांचवा है सामान्य जीवों को अपने भोजन में से भाग देना, पंच महायज्ञ है। विश्वनाथ चक्रवर्ती इस श्लोक की टीका में इशारा करते हैं कि भगवान कृष्ण के महलों में दिन के विभिन्न समय घटित हो रहे थे। ये भी सही है कि नारद जी जब गए ना तो एक एक महल में काफी समय लगता है नारद जी को, तो फिर वो दिन का समय भी बदल जाता है ना, तो जहां स्नान करने की तैयारी करें तो वो स्नान करने का समय था, है ना। तो नारद जी ने प्रातःकालीन अनुष्ठान करते समय भगवान कृष्ण को देखा है, और ब्राह्मणों को भोजन कराते समय देखा, उच्छिष्ट ग्रहण करते समय देखा, दोपहर का कार्य है ये सब। कहीं पर भगवान मौन रहकर और मन ही मन गायत्री मंत्र का जप करते हुए संध्याकालीन पूजा के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं, तो कुछ स्थानों पर तलवार के अभ्यास के लिए तलवार ढाल चला रहे हैं, छत्री को जो ना अभ्यास करना चाहिए तो चला रहे हैं। वापि संध्याम उपासीनम जपंतम ब्रह्मवान्युतम एकत्र चासी चरमाभ्याम चरंतम असीवर्मसु। जो तलवार ढाल, तलवार और ढाल को चलाने का जो अभ्यास है ये सवेरे किया जाता है, और संध्या उपासन, संध्याकालीन उपासना ना। और फिर किसी महल में भगवान क्या कर रहे हैं, घोड़ों और हाथियों और रथों पर सवारी कर रहे हैं परीक्षा कर रहे हैं रथों की, घोड़ों की, हाथियों की, तो सवारी कर रहे हैं। और दूसरे स्थान पर मतलब किसी महल में क्या है, पलंग पर लेटे हुए हैं, और जो बंदी लोग हैं वो स्तुति कर रहे हैं भगवान की। अश्वैर गजय रथ है क्वापी विचरंतम गदांग्रजम कुछ छयानम पर्यंके स्तूयमानम च बंदिभिः। अच्छा, और किसी महल में भगवान क्या कर रहे हैं, उद्धव जी के साथ और मंत्रियों के साथ राज्य के कार्यों में सलाह ले रहे हैं, मंत्रणा कर रहे हैं और कहीं पर अनेक नृत्यांगनाओं और तरुणियों से घिरकर जल क्रीड़ा कर रहे हैं। प्रत्येक महल में स्विमिंग पूल भी बना हुआ है प्रत्येक महल में। मंत्रयंतम चकंसमिश्चिन मंत्रविश्चोद्धमादि भी जल क्रीड़ा रतम क्वापी वार मुख्या बलामृतम। जल क्रीड़ा दोपहर के बाद की है, और मंत्रियों के साथ जब भगवान मिलते हैं तो संध्या के समय मिल रहे हैं। अब किसी महल में भगवान क्या कर रहे हैं, ब्राह्मणों को गौ में दान कर रहे हैं, भली भ्रांति अलंकृत यानी आभूषणों से सजा करके गौ में दान कर रहे हैं भगवान, और कहीं कहीं पुराण श्रवण कर रहे हैं भगवान है? इतिहास पुराण श्रवण कर रहे हैं, इतिहास जैसे महाभारत इतिहास है, इतिहास और पुराण का श्रवण कर रहे हैं भगवान है ना, श्रवण करना चाहिए। कुत्रचिन्द जय मुखेभ्यो ददनम गासुलंकृता इतिहास है पुराणानी श्रणवंतम मंगलानी च। अब गौ में दान कर रहे हैं भगवान, ये प्रातः काल का समय था, और इतिहास श्रवण कर रहे हैं अपराह्न काल। अपराह्न काल मतलब 3:22 से 5:46 तक होता है अपराह्न काल, तो ये समय चल रहा है अभी, तो ये समय है इतिहास श्रवण करने का। तो हम लोग भी श्रवण कर रहे हैं है? भगवान श्रवण कर रहे हैं अपराह्न काल में। सही समय है। और किसी महल में भगवान क्या कर रहे हैं, अपनी पत्नी के साथ हास परिहास कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब इतने गंभीर रहे, पत्नी तो माया है ना, ये बच्चे माया है, पत्नी माया है ना, बात ही नहीं करते हैं या झड़प देते हैं, डांट देते हैं, चुप बात नहीं करना, सब माया है, ऐसा नहीं है। किसी पत्नी से हाथ परिहास करते हैं, और कहीं वे अपनी पत्नी समेत धार्मिक कृत्यों में व्यस्त पाए, पत्नी को भी धार्मिक कार्यों में लगा रहे हैं है ना। कहीं पर कृष्ण आर्थिक विकास के मामलों में चर्चा कर रहे हैं, और कहीं पर शास्त्रों के नियम अनुसार गृहस्थ जीवन का भोग कर रहे हैं। हसंतम हास्य कथया कदाचिन प्रिय या गृहे पापी धर्मम सेव्यमानम अर्थ कामो च कुत्र चिन। तात्पर्य लिखा है हंसी मजाक रात के समय किया जाता है, तो पत्नी के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, और धार्मिक अनुष्ठान ये दिन और रात दोनों में ही गृहस्थी जीवन में चलते हैं, दिन में भी चलते हैं धार्मिक अनुष्ठान, रात में भी चलते हैं। और कहीं पर एकांत में ध्यान कर रहे हैं भगवान, अकेले बैठे हुए भौतिक प्रकृति से परे परमेश्वर का ध्यान कर रहे हैं, तो कौन है, वही है, अपना ही ध्यान कर रहे हैं और कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं है ना। और कहीं पर भी अपने बड़ों को इच्छित वस्तु देते हैं, उनकी इच्छा पूरी करते हैं, आप क्या चाहते हैं, बड़े जैसे देव की वसुदेव हैं उनके माता पिता, उनकी आदर पूर्वक पूजा करके उनकी दास के समान सेवा कर रहे हैं, उनके तो हजारों दास हैं, ये उन अपने माता पिता की भी दास के समान सेवा करते हैं। ध्यायन्तम् मेघमासीनम् पुरुषम प्रकृते परम शुश्रूषन्तम् गुरुन् क्वापि कामेर भोगे सपर्ययाम्। तात्पर्य लिखा है श्रील प्रभुपाद की टीका है, जैसा कि प्रामाणिक ग्रंथों में कहा गया है, ध्यान भगवान विष्णु पर चित्त एकाग्र करने के लिए किया जाता है। भगवान कृष्ण स्वयं ही आदि विष्णु हैं, किंतु एक मानव का अभिनय करने के कारण अपने व्यक्तिगत व्यवहार द्वारा उन्होंने हमें निश्चित रूप से यह शिक्षा दी कि ध्यान का क्या अर्थ है। ध्यान ब्रह्म मुहूर्त में होता है, ब्रह्म मुहूर्त 4:10 से 4:58 तक होता है। अच्छा, फिर किसी महल में भगवान क्या कर रहे हैं, सलाहकारों के साथ विचार विमर्श करके युद्ध की योजना बना रहे हैं कि भाई इसके साथ युद्ध करना है, और दूसरे महल में शांति स्थापित करने की योजना बना रहे हैं, भाई इस राजा के साथ में संधि कर लेना चाहिए, शांति स्थापित कर लेना चाहिए, और कहीं पर कृष्ण और बलराम मिलकर के पवित्र लोगों के कल्याण के विषय में विचार कर रहे हैं कि साधुओं का कैसे कल्याण हो, बलराम जी के साथ बैठ करके। कुर्वन्तम् विग्रहम् कैश्चिन् संधिम् चान्यत्र केशवम् कुत्रापि सह रामेण चिंतयन्तम् सताम् शिवम्। इसके बाद किसी और महल में जब नारद जी गए तो क्या देखा, अपने पुत्रों का विवाह करा रहे हैं, किसी महल में अपनी पुत्रियों का विवाह कर रहे हैं, उचित समय पर अपने पुत्र और पुत्रियों का विवाह कर रहे हैं, और बड़ी धूमधाम से विवाह उत्सव संपन्न हो रहे हैं। पुत्राणाम गुहित्रिणाम च काले विद्युपयानयम् दारेर वरेस्तत्सदृश कल्पयन्तम् विभूतिभिः। यहाँ पर काले शब्द का अर्थ है जब भगवान कृष्ण के पुत्र और पुत्रियां उचित आयु की हो गई तो उनके विवाह की व्यवस्था हुई। काले है ना, काले का मतलब उचित काल में, जो विवाह का समय होता है उचित समय में अपने पुत्र का और पुत्री का विवाह कर देना चाहिए। और फिर भगवान किसी महल में क्या कर रहे हैं, अपनी पुत्रियों को बिताई दे रहे हैं, पुत्री को ससुराल भेज रहे हैं, पुत्री और दामाद को बिताई दे रहे हैं, और पुनः महोत्सवों के अवसर पर उनका घर में स्वागत करने की व्यवस्था कर रहे हैं, अपनी पुत्री और दामाद का स्वागत कर रहे हैं किसी महल में है? और सारे नागरिक इन उत्सवों को देख करके विस्मित हो रहे हैं, कैसे सुंदर उत्सव है, हर महल में अद्भुत लीलाएं हैं। प्रस्थापनोपनयन अपत्यानाम महोत्सव वीक्ष योगे स्वर्ण ये शाम लोका विशिस्मिरे। कहीं पर भी विस्तृत यज्ञों द्वारा देवताओं की पूजा कर रहे हैं और कहीं भी जन कल्याण के कार्य जैसे कुएं उद्यान और मठ बनवाकर अपना धार्मिक कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। यजन्तम सकलान देवान क्वापि कृतुभिरोर्जित पूर्तियन्तम क्वचिन धर्मम कूर्पारामे मठादिभि। अब और दूसरे महल में नारद जी ने देखा, क्या देखा कि वे शिकार खेलने गए हैं। तो महल की जो पत्नी है और जो सेवक है जानते हैं कि शिकार खेलने गए हैं, वो अभी नहीं है महल में, तो शिकार खेलने गए हैं। तो सिंधी घोड़े पर सवार होकर के अत्यंत वीर यादवों के संग यज्ञ में बलि के निमित्त पशुओं का वध कर रहे हैं, पवित्र पशुओं का वध कर रहे हैं। चरंतम मृगयाम क्वापि है मारो है सैंधव ग्रंथम तत्र पशुन मेध्यान परेतम यदु पुंगवे। इसको समझना चाहिए कि पशुओं की हत्या जो भगवान कर रहे हैं यज्ञ के लिए, तो प्रभुपाद की टीका है कि वैदिक नियमों के अनुसार क्षत्रियों को वन में शांति बनाए रखने के लिए अथवा यज्ञ में बलि देने के लिए निश्चित अवसरों पर निश्चित पशुओं का शिकार करने की अनुमति थी। क्षत्रियों को वध करने की इस कला का अभ्यास करने की छूट है, क्योंकि उन्हें समाज में शांति बनाए रखने के लिए अपने शत्रुओं का निर्ममता पूर्वक वध करना होता है। इसलिए शिकार खेलते हैं, अभ्यास करते हैं निशाना चलाने का, तो पशुओं पर निशाना चलाते हैं तो ये जरूरी है उनको, नहीं तो फिर आगे शत्रुओं पर कैसे निशाना चलाएंगे वो। और दूसरे स्थान पर भगवान क्या कर रहे हैं, महल में वेश बदल करके मंत्रियों और नागरिकों के घरों में ये जानने के लिए कि हर व्यक्ति क्या सोच रहा है, इधर उधर घूम रहे हैं जानने के लिए। अकेले में कुछ दूसरी बात सोचते हैं लोग, और मुंह के सामने कुछ और बोलते हैं, तो ये जानने के लिए भी जो ना स्वयं जासूसी कर रहे हैं। अगर किसी जासूस को कहेंगे तो हो सकता है वो भी कुछ बात बदल दे, ये सही सही बात जानने के लिए वो स्वयं जासूसी कर रहे हैं। तो मंत्रियों के घरों के आसपास घूम रहे हैं, सुन रहे हैं उनकी बातें कैसी हैं। अव्यक्त लिंगम प्रकृति संता पुरय गृहादिषु क्वचित चरंतम योगेशम तत्तन भावो बुभुत्सयाम। तात्पर्य लिखा है, यद्यपि भगवान कृष्ण सर्वज्ञ हैं, किंतु राजा की भांति लीला करते हुए कभी कभी वेश बदलकर अपने राज्य की आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए विचरण करते हैं। राजा को ऐसा होना चाहिए, है ना, कभी कभी मंत्री योजना बनाता है राजा के विरुद्ध भी, तो राजा को यही पता होना चाहिए। और फिर राजा क्या करता है, देखता है कि मंत्री ऐसा है तो सामने से कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसका पत्ता साफ कर देता है कहीं ना कहीं से, या मरवा डालता है उसको। राजा के कर्तव्य है, कोई व्यक्ति उसके विरुद्ध अगर षड्यंत्र कर रहा है तो वो भी षड्यंत्र करता है, उसको कहीं ना कहीं कैसे भी उसको मरवा डाले, क्योंकि वो उसके विरुद्ध है कर रहा है। आज की राजनीति तो इंद्रिय पर आधारित है ना, लेकिन वो थी कृष्ण चेतना पर आधारित। राजा जो है उसके विरुद्ध का मतलब भगवान के विरुद्ध, क्योंकि राजा पूर्ण रूप से भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहा है, भगवान के ही आदेशों का पालन कर रहा है ना। तो वहीं पर जो गलत काम है वो सही हो जाता है, क्योंकि तो भगवान की प्रसन्नता के लिए वो ये काम कर रहा है ना। और ये अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए एक दूसरे को मारते हैं राजनीति में, तो ये जो है ना गलत काम है। अच्छा अब क्या हुआ, इस प्रकार भगवान की योग माया का ये दृश्य देखकर नारद जी मुस्कुराए। तब उन्होंने भगवान हृषिकेश को संबोधित किया जो मनुष्य का आचरण कर रहे थे। अब नारद जी को मौका मिला, किसी स्थान में भगवान कैसे बिल्कुल अकेले मिल गए है ना, कहीं ना कहीं तो मिले अकेले, और जहां बिल्कुल अकेले मिल गए वहां नारद जी को मौका मिला कि मतलब क्या चक्कर है, मैं सब समझ रहा हूं आपका चक्कर क्या है। तो नारद जी बोलते हैं भगवान से, अथो माचय ऋषिकेशम नारदा प्रसन्न योग मायोदयम भीक्ष मानुषीम यशो गतिम। तात्पर्य लिखा है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार, नारद मुनि भगवान की सर्वज्ञता को पूरी तरह समझते थे, अतः जब उन्होंने भगवान को वेश बदलकर अपने मंत्रियों के भाव जानने का प्रयत्न करते देखा तो नारद जी अपनी हंसी रोक ना सके। अब क्या कहते हैं नारद जी, हे परमात्मा, हे योगेश्वर, हम आपकी योग शक्तियों को समझ सके हैं, जिन्हें बड़े बड़े योगी भी मुश्किल से समझ पाते हैं, एकमात्र आपके चरणों की सेवा करने से मैं आपकी शक्तियों का अनुभव कर सका हूँ। विदाम योग माया से दुर्दर्शा अपि मायिना योगेश्वरात्मन निर्भाता भवत पादे निसेवयाम। तात्पर्य लिखा है आचार्यों के अनुसार ये श्लोक इंगित करता है कि ब्रह्मा और शिव जैसे बड़े बड़े योगी भी भगवान की योग शक्ति को पूरी तरह समझ नहीं पाते हैं। नारद जी क्या कहते हैं, हे प्रभु, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, मैं उन लोकों में जो आपके यश से आप्लावित हैं, ब्रह्मांड को पवित्र करने वाली आपकी लीलाओं का जोर जोर से गायन करते हुए विचरण करूंगा। अनुजानी हि माम देव लोकांते यश साप्लुतां पर्यटामि तवोन गायन लीला भुवने पावनी। तो नारद जी जो कहते हैं कि आपकी भुवन पावनी लीला का गान करते हुए विचरण करूंगा, इसका मतलब क्या है कि भगवान के सब जो कार्यकलाप जो वो देखते हैं तो वो जगह जगह बैठ करके सुनाएंगे, सभाओं में, बड़ी बड़ी सभाएं जहां हजारों लाखों लोग होते हैं वहां नारद जी बैठ करके और इस प्रकार से भगवान का गुणगान करते हैं, है ना, ये मतलब है ना। तात्पर्य लिखा है नारद मुनि तक भगवान कृष्ण की मानव रूप में की जा रही आश्चर्यमयी लीलाओं को देखकर मोहित थे, अतः वे अनुजानी हि माम देव शब्दों के द्वारा अपने प्रचार के कार्य में वापस जाने की अनुमति चाहते हैं। जो कुछ उन्होंने देखा था उससे प्रोत्साहित होकर वे भगवान श्री कृष्ण के यश का दूर दूर तक प्रचार करना चाह रहे थे। इंटर गैलेक्सियल प्रीचर नारद जी हैं, अंतरग्रही प्रचारक नारद जी हैं। और अब भगवान क्या कहते हैं नारद जी से, हे ब्राह्मण, मैं धर्म का उपदेशक हूं, उसका करता हूं, अनुमोदन करता हूं, इसलिए जगत को शिक्षा देने के लिए धर्म का पालन करता हूं, अतएव तुम विक्षुब्ध मत होना। विक्षुब्ध नहीं होना। ब्रह्मन् धर्मस्य वक्ता हम कर्ता तदनुमोदिता तच्छिक्षयन् लोकमिमं आसितः पुत्रमाख्यदा। भगवान क्या कहते हैं, पुत्र भगवान कह रहे हैं, एकांत में मिल गए इसलिए, नहीं तो पुत्र थोड़े कहते, वो तो उनके चरणों की पूजा करते, उनके चरणों का धोवन अपने सिर में धारण करते, ये पुत्र भगवान कह रहे हैं बिल्कुल एकांत में है, तो कह रहे हैं पुत्र। और क्या कहते हैं कि तुम पुत्र हो, मतलब पुत्र क्या क्या कार्य होता है, पिता की नकल नहीं कर रहे है ना, तो मैं जैसे घर गृहस्थी के कार्यों में लगा हूं तुम्हें कोई जरूरत नहीं है इन चीजों के चक्कर में पड़ने की, है ना, ये भगवान कह रहे हैं। तो पुत्र को जो ना अपनी स्थिति देखना चाहिए कि अपनी स्थिति क्या है। तात्पर्य लिखा है, इसलिए जीव गोस्वामी बतलाते हैं कि भगवान कृष्ण नारद जी के उस कष्ट को दूर करना चाहते थे जिसे उन्होंने भगवान कृष्ण द्वारा देवताओं की तथा स्वयं की पूजा करते देखकर अनुभव किया था। हाँ, तो भगवान तो बड़े दुखी थे ना नारद जी कि भगवान उनकी भी पूजा करते हैं, देवताओं की पूजा कर रहे हैं। हाँ, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती व्याख्या करते हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं, जैसा कि मैंने भगवद गीता में कहा है, भगवान नारद जी कहते हैं कि मैंने भगवद गीता में कहा है क्या, यद्यत आचरत श्रेष्ठ तत्तते बेहतरो जनहा, महापुरुष जो भी करता है सामान्य जन उसी का अनुसरण करते हैं, इसीलिए मैंने धर्म के नियमों का विस्तार करने के लिए ही आज आपके चरण पखारे हैं। प्राचीन काल में मैंने धर्मों के नियमों का सीधे उपदेश देने की लीला प्रारंभ नहीं की थी कि तुमने मेरे द्वारा केसी असुर के मारे जाने पर मेरी स्तुति की थी, किंतु मैं तुम्हारी विस्तृत स्तुतियों और यशोगान को केवल सुनता रहा और तुम्हारा सम्मान नहीं किया, इसे स्मरण करके केवल विचार करूं। तुम मेरे द्वारा आज अपने चरण पखारे जाने और चरणोदक को स्वीकार करने की अनुमति देने को अपराध ना मानो। हाँ, कि मतलब तुमसे बड़ा अपराध हो गया कि मैंने तुम्हारे चरण धोए, नहीं। जिस प्रकार बालक अपने पिता की गोद में बैठे हुए अपने पांव छुआकर पिता का अपमान नहीं करता, हाँ ये भी ठीक है, छोटा बच्चा होता है तो पिता को अपने पैर छुआता है, ठीक है, नहीं कभी अपने पिता के मुंह में भी पैर छुला देता है। हाँ, उस दिन हे पुत्र तुम भी समझो कि तुमने कोई अपराध नहीं किया है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी ने हर महल में भगवान को एक ही स्वरूप में गृह कार्यों में व्यस्त रहने वालों को शुद्ध करने वाले दिव्य धार्मिक नियमों को संपन्न करते देखा। इत्याचरन्तं संधर्मान् पावनान् गृहमेदिनां तमेव सर्वगेहेषु संतमेकं ददर्श। तात्पर्य लिखा है, इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी उसी को दोहराते हैं जो स्वयं भगवान ने बताया। भगवान कृष्ण में एक पुस्तक भगवान कृष्ण में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं लोगों को ये शिक्षा देने के लिए कि किस प्रकार भौतिक जगत के बंधनों से बद्ध होकर भी मनुष्य अपने गृहस्थ जीवन को पवित्र बना सकता है। भगवान गृह कार्यों में संलग्न थे। वास्तव में गृहस्थ जीवन के कारण ही मनुष्य इस संसार में जीवित रहने के लिए बाध्य है, किंतु गृहस्थों पर अत्यंत कृपालु होने के कारण भगवान ने साधारण गृहस्थ जीवन को पवित्र करने वाला मार्ग प्रदर्शित किया। कृष्ण समस्त गतिविधियों के केंद्र हैं, अतएव कृष्ण भावना भावित गृहस्थ का जीवन वैदिक आदेशों से ऊपर है और स्वतः पवित्र बन जाता है। जैसा कि इस अध्याय के श्लोक 2 में कहा गया है, भगवान द्वारा अनेक महलों में एक ही शरीर द्वारा सारे कार्य संपन्न हो रहे थे जो एक साथ अनेक स्थानों में दिख रहे थे। नारद जी को यह दृश्य इसलिए प्रकट कराया गया क्योंकि वे देखना चाहते थे और भगवान उन्हें दिखाना चाहते थे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती इशारा करते हैं कि द्वारका के अन्य वासी नगर के उसी भाग में कृष्ण को देख सकते थे जहां वे रह रहे थे, अन्य स्थानों पर नहीं देख सकते थे। अगर वो जाते भी हैं तो वो नहीं देखेंगे अन्य स्थानों में, है ना। हाँ, ये बात सही है। अगर भगवान की एक पत्नी दूसरे महल में जाएगी तो वो नहीं देखेगी भगवान को, ये तो लड़ाई झगड़ा होगा। तो घर के जो सेवक नौकर चाकर भी हैं जिस महल के हैं तो वो उसी महल में भगवान को देखेंगे, दूसरे महल में नहीं देखेंगे भगवान को। हाँ, इस तरह भगवान ने अपने प्रिय भक्त नारद मुनि को अपनी लीलाओं की विशेष झांकी दिखलाई। आगे, असीम शक्ति वाले भगवान कृष्ण के विस्तृत योग प्रदर्शन को बारंबार देख लेने के बाद ऋषि चकित एवं आश्चर्य से पूरित हो गए। कृष्णस्यानन्त वीर्यस्य योग माया महोदयम् पुहर्दृष्ट्वा ऋषि रघुन् विस्मितो जाते कौतुकः। भगवान कृष्ण ने नारद जी का बहुत सम्मान किया, उन्हें श्रद्धा पूर्वक उपहार भेंट किए। इस तरह ऋषि पूरी तरह तुष्ट होकर निरंतर भगवान के स्मरण करते हुए वहां से चले गए। यत्यर्थ है काम है धर्मेशु कृष्णेन श्रद्धितात्मना सम्यक सभाजिता प्रीतम तमेवानुस्मरण्य। तात्पर्य लिखा है जैसा कि श्रील प्रभुपाद ने श्री कृष्ण पुस्तक में इंगित किया है, अर्थ काम धर्मेशु वाक्यांश सूचित करता है कि कृष्ण उस सामान्य गृहस्थ की तरह आचरण कर रहे थे जो आर्थिक विकास इंद्रिय तृप्ति और धार्मिक कार्यों में अत्यधिक रुचि रखता है। नारद मुनि भगवान के उद्देश्य को समझ सके और वे श्री कृष्ण के आदर्श आचरण से बहुत प्रसन्न हो गए। इस तरह शुद्ध कृष्ण भावनामृत से उद्बुद्ध हो वे वहां से चले गए। इस तरह भगवान नारायण ने सभी जीवों के लाभ हेतु अपनी दैवी शक्तियों को प्रकट करके सामान्य मनुष्यों की चाल ढाल का अनुकरण किया। हे राजन, इस प्रकार उन्होंने अपनी उन 16,000 वरिष्ठ प्रेयसियों के साथ रमण किया जो अपनी लजीली स्नेहमयी चितवनों और मुस्कान से भगवान की सेवा करती थी। एवं मनुष्य पदीम अनुवर्तमानु नारायणो खिल भवाय गृहीत शक्ति रेमेंग षोडश सहस्र वरांगनानां सब्रेड सौहृद निरीक्षण हाथ जुष्ट। भगवान कृष्ण ही ब्रह्मांड की सृष्टि पालन और संहार के चरम कारण है। हे राजन, जो भी इनके कार्यों का कीर्तन करता है क्या इस संसार में जो उन्होंने लीलाएं की हैं, इनका जो कीर्तन करता है यानी सुनाता है या सुनता है या केवल प्रशंसा करता है, अनुकरण नहीं करना, बताना है और सुनना है और प्रशंसा करना है, तो अवश्य ही वो भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न कर लेगा। जो मोक्ष के प्रदाता भगवान है अवश्य भक्ति होगी उसको। यानी है विश्व मिलियो भव वृत्ति हेतु कर्मानन्य विषयाणि हरे सकार यस्त्वंग गायति श्रणोत्यनु मोदते वा भक्तिर भवेद् भगवते यपि वर्गे मार्गे। तात्पर्य लिखा है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने अनन्य विषयाणि शब्द के अनेक अर्थ दिए हैं इस श्लोक में है। अनन्य विषयाणि ये शब्द सूचित करता है कि भगवान ने द्वारका में ऐसे कार्य संपन्न किए जो उनके स्वांसों के लिए भी असामान्य थे। श्वास भगवान के श्वास विस्तार होते हैं ना बहुत से, वो भी नहीं कर सकते हैं। दूसरा को तो कहना ही क्या है। अथवा इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि भगवान ने ये कार्यकलाप अपने शुद्ध अनन्य भक्तों के लिए संपन्न किए। कुछ भी हो, जो भी इन लीलाओं के विषय में सुनता सुनाता है वो अवश्य ही कृष्ण भावनामृत में लग जाएगा। जैसा कि श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, निश्चय ही उसे मुक्ति पथ को पार करने में और भगवान के चरण कमलों के अमृत का आस्वादन करने में आसानी होगी। श्रील प्रभुपाद ये भी इशारा करते हैं कि अनुमोदते शब्द यहाँ पर इस बात का सूचक है कि जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रचारक का अनुमोदन करता है वो भी यहाँ पर उल्लिखित लाभ प्राप्त करेगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के अंतर्गत नारद मुनि द्वारा द्वारका में भगवान कृष्ण के महलों को देखना शीर्षक 69वां अध्याय पूर्ण हुआ। इस अध्याय में 45 श्लोक हैं, तो ये पूरा हमने पढ़ा है। अब कोई प्रश्न या कोई चर्चा? शालिग्राम प्रभु का प्रश्न है कि भगवान कृष्ण की जो है जो द्वारका में जो व्यवस्था है, राज्य की व्यवस्था है, तो इतनी पूर्ण है तो ऐसा लगता है कि अयोध्या में जो राम राज्य था उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ है। लेकिन हमेशा राम राज्य की बात होती है, कृष्ण राज्य की बात क्यों नहीं होती? इसके कई कारण है। एक कारण तो ये है कि राम राज्य जो है चला कितने साल तक? 11,000 साल तक। 11,000 साल श्रीमद् भागवत में है, हाँ, तो 11,000 साल या 13,000 साल इस प्रकार से जो है ना राम राज्य चला, है ना। तो एक कारण तो ये भगवान कृष्ण लीलाएं की, तो कुल मिलाकर ये 125 साल हैं भगवान की लीलाओं के, है ना, जिनमें से 11 साल तो वृंदावन की लीलाएं हैं और उसके बाद 18 साल और मान लीजिए मथुरा की लीलाएं, तो 11, 18, 29, है ना, 29 साल तो ये निकल गए। तो फिर 125 में 29 घटाओगे तो कितना? 96 साल, छियानवे साल, तो वहां राम राज्य हुआ 13,000 साल तक चला, है ना। तो एक कारण तो ये भी है। और फिर भगवान रामचंद्र जो है ना, मतलब पूर्ण मनुष्य की भूमिका निभा रहे हैं, पूर्ण मनुष्य, है ना। तो इसका एक और भी कारण है कि मतलब भगवान कृष्ण का ऐश्वर्य जो है ना अक्सर प्रकट होता रहता है, और जो द्वारकावासी हैं वो भी इसी प्रकार से जानते हैं। लेकिन भगवान राम जो है कभी दो भुजाओं से चार भुजाएं नहीं धारण करते हैं। भगवान राम कभी भी चक्र इस्तेमाल नहीं करते हैं, सुदर्शन चक्र, गरुड़ जी पर सवार नहीं होते हैं कभी, है ना। तो भगवान कृष्ण, फिर लोग तो यही सोचते हैं भाई वो तो भगवान है कि नहीं, हम तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन राम जो है ना मतलब पूर्ण मनुष्य की भूमिका निभा रहे हैं कि भाई कैसे मनुष्य को करना चाहिए आचरण। तो इस कारण से जो है मतलब और ज्यादा राम राज्य की चर्चा होती है कि कोई व्यक्ति मतलब पूरी तरह से समझे कि भाई ऐसे जो है ना मतलब करना चाहिए, क्योंकि राम पूरी तरह से मनुष्य का जो है आचरण कर रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में तो भगवान शब्द राम के लिए आए नहीं कहीं पर, भगवान शब्द राम के लिए आए नहीं। हालांकि बताया गया है कि वो मतलब विष्णु है, देवताओं के देवता हैं, विष्णु है, है ना, ये बताया है। लेकिन फिर भी भगवान शब्द हमने खोज किया है, राम के लिए भगवान शब्द कहीं नहीं आया। तो ज्यादातर वाल्मीकि रामायण में इस प्रकार से चरित्र दिखलाते हैं राम का कि मतलब एक मनुष्य के रूप में वो कैसे कर रहे हैं, और स्वयं अपने को भी मनुष्य की तरह सोच रहे हैं और हर बात मनुष्यों की ही तरह कर रहे हैं भगवान राम। तो बहुत विस्तृत है राम राज्य की जो बातें हैं वो बहुत विस्तृत भी हैं कि कैसी कैसी घटनाएं हुई, क्या क्या घटनाएं हुई राम राज्य में इस कारण से। और कोई प्रश्न? हाँ, सजीपति प्रभु का प्रश्न है कि जब अलग अलग महलों की स्त्रियां हैं, कभी आपस में मिलती हैं एक दूसरे से, तो क्या चर्चा नहीं करती हैं कि भगवान मेरे साथ थे, भगवान मेरे साथ थे, और कुछ रहस्य पता चले। हाँ, वैसे तो ऐसी बात नहीं है कि वो बिल्कुल अज्ञान में ही हैं, उनकी पत्नियां बिल्कुल अज्ञान में नहीं हैं, और वो जानती हैं कि ये भगवान है, ये तो अज्ञान नहीं कहा जा सकता कभी भी। लेकिन योग माया का प्रभाव ऐसा होता है कि फिर अक्सर फिर वो ये सोच लेती हैं कि नहीं और किसी के पास नहीं है, वो मेरे ही साथ हैं। लेकिन वो अज्ञान नहीं कहा जाएगा, वो जानती हैं कि ये है। धन्यवाद।